आज जब दलित साहित्य मराठी में तो केंद्रीय स्थान हासिल कर चुका है, दूसरी भाषाओं में भी विकास की प्रक्रिया में है। यह मुद्दा हिंदी व कुछ अन्य भाषाओं में उठ रहा है कि दलित साहित्य का रचयिता कौन हो सकता है। हिंदी में दलित साहित्य के अधिकांश प्रणेता इस मत के पक्ष में हैं। दलितों द्वारा दलितों के जीवन पर दलितों के लिए लिखा साहित्य ही दलित साहित्य कहलाने का हकदार है। यद्यपि इस बात को एक पूरे तर्क के तौर पर रखा जा सकता है, लेकिन इस तर्क के कुछ आंतरिक अंतर्विरोध हैं। जैसे चाहे कोई लेखक सिर्फ दलितों के लिए ही लिखना चाहे, जब कोई पुस्तक या पत्रिका छपकर बाजार में आ गई तो भले ही उस पर लेबल लगा हो केवल दलितों के लिए, दलितेतर पाठकों तक उस पुस्तक या पत्रिका को पहुंचने से रोका नहीं जा सकता। दूसरे, रोका जाए भी तो क्यों? दलित समुदाय बृहत्तर समाज का अंग है। वह बृहत्तर समाज यदि दलित समुदाय के सुख दुख से अपरिचित है तो उसे साहित्य या अन्य माध्यमों द्वारा परिचित होना चाहिए और दलितों की मानवीय अस्मिता के प्रति बृहत्तर समाज की संवेदना जागृत होनी चाहिए, जिसमें दलित साहित्य की भूमिका हो सकती है। अब रहा दलितों के जीवन पर लिखने का अधिकार। बृहत्तर समाज एक ऐसी इकाई है जिसमें विभिन्न सामाजिक समुदाय एक दूसरे से आदान प्रदान में रहते हैं। यह आदान प्रदान अपनी प्रकृति में संघर्षात्मक भी हो सकता है, मैत्रीपूर्ण भी या विशुद्ध व्यावसायिक भी। कोई भी लेखक समाज को अपनी रचना का विषय बनाएगा तो वह किसी एक समुदाय को दूसरे समुदाय से काट कर नहीं देख सकता। हाँ, उस लेखक की संवेदना या सहानुभूति समाज के किसी विशिष्ट अंग या समुदाय से अवश्य हो सकती है। इस अर्थ में दलित लेखक की दलित समुदाय से निकटता या उस समुदाय का अंग होने की स्थिति अपने समुदाय को अधिक संवेदना सहानुभूति या अधिक वस्तुगतता से चित्रित करने में सहायक हो सकती है। लेकिन समाज के विभिन्न समुदायों को एक दूसरे के साथ विरोध, संघर्ष या मित्रता में देखा जा सकता है, किंतु एक दूसरे से काट कर नहीं देखा जा सकता। इस अर्थ में हर लेखक अपनी रचना में बहुत सारे समुदायों को एक ही समय चित्रित करेगा और इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक लेखक की अंतर्दृष्टि, उसकी विकसित मानवीय संवेदना उसे उसी समुदाय के साथ जोड़े जो मानवीय स्तर पर सर्वाधिक उत्पीड़ित है। हिंदी में प्रेमचंद, निराला, नागार्जुन, धूमिल, जगदीश चंद्र व अन्य अनेक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने अपनी विकसित मानवीय संवेदना और अंतर्दृष्टि से अपनी रचनात्मकता में दलित समुदाय से स्वयं को जोड़ा है। यहाँ पर हिंदी के दलित रचनाकार आत्मानुभूति व सहानुभूति का सवाल खड़ा कर कहते हैं कि आत्मानुभूति या दलित लेखन की अपनी भोगी पीड़ा से उसके साहित्य में आक्रोश व विद्रोह पैदा होता है, जबकि गैर दलित लेखकों की रचनात्मकता में दलित समुदाय के प्रति केवल सहानुभूति, कई बार वह छल पूर्ण पैदा होती है। यह मुद्दा कुछ हद तक यहाँ उलझ जाता है। जन्म और संस्कारों की पृष्ठभूमि भी यहाँ आड़े आती है, लेकिन सवाल यह है कि मानवीय चेतना की इस पूरी स्थिति में क्या भूमिका है। फिर एक वैज्ञानिक प्रश्न भी यहाँ खड़ा हो सकता है, अनुवांशिकता का। जब हम आधुनिक ज्ञान विज्ञान द्वारा आलोकित इस तर्क, तथ्य व सच्चाई को मानते हैं कि मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में अनुवांशिकता का कम और सामाजिक पर्यावरण और शिक्षा दीक्षा का योगदान ज़्यादा है, तो इसी तर्क से इस बात को मानना होगा कि मनुष्य का जन्म कहाँ होगा यह तो उसके वश में नहीं है, लेकिन जीवन में अपने व्यक्तित्व की दिशा अपनी चेतना के सहारे निर्धारित करना तो काफ़ी हद तक उसके वश में है। यदि बुद्ध का यह संदेश सच है, अपदीपो भव, और यदि बुद्ध स्वयं राज परिवार में जन्म लेकर भी जीवन के सुखों को छोड़कर मानव की मुक्ति के मार्ग पर चले और मानवता के आदर्श बने, तो आधुनिक काल में ज्ञान विज्ञान व मानवीय चेतना के विकास के संदर्भ में इस बात की संभावना और भी बढ़ जाती है कि प्रबुद्ध व मानवतावादी चेतना से अनुप्राणित लेखक स्वयं उत्पीड़ित न होकर भी उत्पीड़कों से स्वयं को जोड़े। इस बात में उसका लेखकीय हित भी निहित है, क्योंकि वही रचना ज्यादा गहरी व टिकाऊ होगी जिसमें मानवीय संवेदना अधिक मर्मस्पर्शी होगी। यह प्रश्न केवल दलित साहित्य के संदर्भ में ही नहीं, प्रगतिशील जनवादी साहित्य के संदर्भ में भी उठता रहा है कि बिना मजदूर या किसान वर्ग की पीड़ा का अनुभव किए क्या एक मध्यवर्गीय सुविधा संपन्न लेखक मजदूर किसान क्रांति का सच्चा समर्थक हो सकता है या उनके संघर्षों का सच्चा चित्रण अपने लेखन में कर सकता है। इस संदर्भ में डिक्लास होने या अपने वर्ग की सीमा से मुक्त होने की स्थिति में ऐसा होना संभव माना गया है। यद्यपि डिक्लास होना अत्यंत कठिन व जटिल प्रक्रिया है, और बहुत ही कम लेखक या बुद्धिजीवी इस कसौटी पर खरे उतरते हैं। बुद्धिजीवी या लेखक तो दूर की बात, स्वयं क्रांतिकारी पार्टियों के नेता भी कभी डिक्लास होकर मजदूर किसान वर्ग से जुड़ते नजर नहीं आते। दलित लेखन के संदर्भ में भी यह कहा जा सकता है कि भले ही बहुत कम लेखक ऐसा कर पाते, लेकिन अपो दीपो भाव को मानकर गैर दलित लेखक भी दलित साहित्य के सर्जक हो सकते हैं। इस संदर्भ में यदि प्रेमचंद के प्रगतिशील लेखक सम्मेलन में दिए गए 1936 के भाषण और मराठी दलित लेखक बाबूराव बागुल के आलेख दलित साहित्य मानवतावादी साहित्य ही है को एक साथ पढ़ें तो एक ही आत्मा दोनों आलेखों में प्रतिध्वनित होती नजर आएगी। दलित साहित्य पर विचार करते हुए दूसरा मुद्दा इसके आधार का है। साहित्य या आलोचना की भाषा में कहा जाए तो दलित साहित्य यथार्थवादी आधार का साहित्य है। दलित साहित्य भारतीय समाज के यथार्थ को चित्रित करने वाला साहित्य है। इस अर्थ में दलित साहित्य प्रगतिशील जनवादी साहित्य के निकट है, क्योंकि प्रगतिशील जनवादी साहित्य भी यथार्थवाद को अपनी रचना का आधार मानते हैं। यथार्थवाद की आगे अनेक व्याख्याएं हुई है, प्राकृतवाद, समाजवादी या क्रांतिकारी यथार्थवाद इत्यादि। दलित साहित्य की कुछ रचनाएं कई बार प्राकृतवाद या अति यथार्थवाद की सीमाएं छूती नजर आती है, लेकिन दलित साहित्य की श्रेष्ठ रचनाएं आलोचनात्मक यथार्थवादी रचनाएं हैं, जो केवल जीवन यथार्थ का यथातथ्य चित्रण नहीं कर सकती, वरन उस यथार्थ पर आलोचनात्मक दृष्टि भी डालती हैं और दलित उत्पीड़न के प्रति आक्रोश पैदा करती हैं। सामान्यतः प्रगतिशील जनवादी या श्वेत साहित्य भी श्रेष्ठतर रचनाएं आलोचनात्मक यथार्थवादी दृष्टि से ही सृजित करने में सफल हुआ है। दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र संबंधी चर्चा भी अपेक्षित है, लेकिन सौंदर्य शास्त्र से अधिक महत्वपूर्ण है दलित साहित्य की आलोचना के मानदंड। बहुत से आलोचक साहित्य के कुछ अदृश्य किस्म की शाश्वत मान्यताएं प्रचलित कर दलित साहित्य को साहित्य की श्रेणी से ही खारिज कर देते हैं। ऐसे आलोचक यही सलूक प्रगतिशील जनवादी साहित्य या अश्वेत साहित्य के साथ भी करते रहे हैं। ऐसे आलोचकों के लिए कोई मृत शेर की खाल जैसी चीज है जो दीवारों पर सजाने भर के लिए है। वास्तविकता यह है कि दलित साहित्य हो या अश्वेत साहित्य, ये साहित्यिक प्रवृत्तियां जीवन के संघर्ष को अपनी रचना में प्रतिबिंबित करती हैं और इन शाश्वत आलोचकों को संघर्ष शब्द से भी चिढ़ है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र तो अभी निर्माण की प्रक्रिया में है, लेकिन इस साहित्य को परखने के मानदंड वही है जिनसे विश्व भर का उत्पीड़ितों का साहित्य परखा जाता है। दलित साहित्य ने अन्य साहित्यिक प्रवृत्तियों से अलग आत्मकथा या आत्मचरित्र को केंद्रीय विधा का रूप दिया है। दलित साहित्य के उदय से पूर्व आत्मकथा साहित्यिक कोटि में कम मानी जाती थी, लेकिन दया पवार, लक्ष्मण माने, लक्ष्मण गायकवाड़, पी सोनकांबले, बेबी कांबले, कुमुद पांवड़े, मल्लिका अमर शेख, मोहनदास नमेश राय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, प्रेम गोरखी आदि की आत्मकथाओं या आत्मचरित्रों ने सामान्य जन के जीवन को ऐतिहासिक साहित्यिक शैली में व्यक्त कर नए किस्म का सौंदर्य शास्त्र भी गढ़ा है। दलित साहित्य को साहित्यिक गुणवत्ता की कसौटी पर कसते समय उन्हीं खतरों व कमियों से सावधान रहने की जरूरत है जो खतरे या कमियां प्रगतिशील जनवादी साहित्य के सामने भी रही हैं। ये खतरे या कमियां हैं सतहीपन, नारेबाजी या रचना के रूप पर अपेक्षित ध्यान न देने की प्रवृत्ति। यद्यपि दलित साहित्य भी रूप से अधिक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने वाला साहित्य है, लेकिन साहित्य की वस्तु तभी प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत होगी यदि उसका रूप भी उसकी प्रकृति के अनुकूल हो। दलित साहित्य में आत्मकथा या आत्मचरित्र विधा इसलिए अधिक सफल हुई क्योंकि इस विधा की प्रकृति दलित अभिव्यक्ति की आत्मा के अधिक निकट थी। इस समय दलित साहित्य भारत की अनेक भाषाओं में रचा जा रहा है। हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी इत्यादि में दलित रचनाएं काफी मात्रा में रची जा रही हैं। मराठी भाषा में तो यह इस समय मराठी साहित्य के केंद्र में है। हिंदी और पंजाबी में दलित आत्मचरित्र अधिक प्रतिष्ठित हुए हैं। हिंदी में प्रकाश वाल्मीकि का आत्मवृत्त जूठन व मोहनदास नमिश राय का अपने अपने पिंजरे इस समय चर्चा के केंद्र में है। पंजाबी में प्रेम गोरखी कृत गैर हाजिर आदमी भी चर्चित आत्मकथा रही है। देखना है कि क्या सभी पहचान बनकर उभरती हैं या अन्य विधाएं भी उतना ही सशक्त माध्यम बनती है। दलित साहित्य विश्व साहित्य में किस परंपरा का साहित्य है यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। प्रत्येक देश के अपने सांस्कृतिक पर्यावरण में वहाँ का साहित्य रूप ग्रहण करता है, लेकिन फिर भी यह साहित्य कहीं न कहीं अपने को विश्व साहित्य से जोड़ता भी है। इस संदर्भ में दलित साहित्य को समझना जरूरी है। वास्तव में दलित साहित्य के आरंभ से या इसके पूर्ण रूप से विकसित होने से पहले महाराष्ट्र में एक जबरदस्त सामाजिक आंदोलन पैदा हुआ। भारत की अन्य भाषाओं में दलित साहित्य वहाँ की परिस्थितियों में दलित सामाजिक आंदोलन के अभाव में पैदा हो रहा है वो पनप रहा है, लेकिन सामाजिक आंदोलन के अभाव के कारण मराठी से इतर भाषाओं में दलित साहित्य अभी उतना सशक्त नहीं बन पा रहा जितना यह मराठी में है। महाराष्ट्र में 1967 में महाराष्ट्र बौद्ध साहित्य सभा ने सम्मेलन किया। लगभग इसी समय अस्मिता पत्रिका के जो बाद में अस्मिता दर्श बनी वह अब तक सफलता से चल रही है निकली। अस्मिता व अस्मिता दर्श के माध्यम से महाराष्ट्र के जनमानस में दलित चेतना का प्रसार हुआ और इस चेतना में क्रांतिकारी विस्फोट हुआ 1972 के दलित पैंथर संगठन रूप में, जिसे नयनदेव ढसाल, अर्जुन डांगले व जे बी पवार आदि लेखकों ने स्थापित किया। दलित पैंथर्स अमेरिका में नेग्रो द्वारा स्थापित ब्लैक पैंथर्स से प्रभावित था। दोनों संगठनों की दृष्टि मिलती जुलती थी। इस अर्थ में दलित साहित्य के उद्भव विकास पर अश्वेत साहित्य का काफी प्रभाव है। इसी से यहाँ विश्व साहित्य की परंपरा में दलित साहित्य का स्थान भी तय हो जाता है। दलित साहित्य विश्व के परिवर्तनकामी मानवतावादी साहित्य का एक अभिन्न अंग है। भारत व अन्य देशों का प्रगतिशील जनवादी व स्त्री जीवन केंद्रित साहित्य व श्वेत साहित्य भी विश्व के परिवर्तनकामी मानवतावादी साहित्य के समान रूप से अंग है। विश्व के परिवर्तनकामी मानवतावादी साहित्य की यह परंपरा साहित्य के केंद्र में मनुष्य को रखती है। यह साहित्य कहीं भी और किसी रूप में भी मनुष्य पर अत्याचारों व उसके शोषण का विरोध करता है। यह साहित्य समाज को मनुष्य के हित में बदलने का पक्षधर साहित्य है, एक नए मानवीय समाज के निर्माण का पक्षधर है, जिसमें रंग, वर्ण, जाति, लिंग या सामाजिक सत्ता के आधार पर मनुष्यों के बीच भेदभाव न हो। यह साहित्य शोषण पर आधारित व्यवस्था का विरोधी है और सच्ची मानव समता पर आधारित व्यवस्था के निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध है। विश्व के परिवर्तन के भी मानवतावादी साहित्य की अलग अलग प्रवृत्तियां, दलित, स्त्री केंद्रित, प्रगतिशील, जनवादी या अश्वेत, ये सभी एक ही विचारधारा से प्रभावित या अनुप्राणित नहीं है। इन सभी के चिंतन स्रोत कहीं पर समान हैं, कहीं पर अलग अलग। उदाहरणतः भारतीय दलित साहित्य सर्वाधिक डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों व परंपरा के रूप में गौतम बुद्ध व ज्योतिबा फूले के विचारों से अधिक प्रभावित है। हालांकि दलित लेखकों का एक हिस्सा मार्क्सवाद से भी प्रभावित है। इसी प्रकार अश्वेत साहित्य भी जहाँ एक और अश्वेत चिंतकों से एक हद तक मार्क्सवाद से प्रभावित है। प्रगतिशील जनवादी प्रवृत्ति पूर्णतया मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित है, तो स्त्री केंद्रित लेखन नारीवादी चिंतकों के साथ साथ कुछ हद तक मार्क्सवाद से भी प्रभावित है। कुल मिलाकर भले ही आज विश्व के अनेक देशों में समाजवादी राज्यों का पतन हो गया है, अनेक देशों में क्रांतिकारी आंदोलन विपस्त हालात में है, तो भी पूरे विश्व के स्तर पर मानवता का अनेक रूपों में उत्पीड़न हो रहा है और इस उत्पीड़न के खिलाफ तमाम जगहों पर अनेक रूपों में संघर्ष भी जारी है। इसलिए विचारधारा कोई भी हो, दलित साहित्य हो या अश्वेत, स्त्री साहित्य हो या प्रगतिशील जनवादी साहित्य, ये सभी साहित्यिक प्रवृत्तियाँ पाउलो फरेरा के शब्दों में थोड़ा परिवर्तन कर उत्पीड़ितों का साहित्य है, वह बिना किसी परिवर्तन के उन्हीं के शब्दों में उत्पीड़ितों का यह साहित्य मुक्ति के लिए सांस्कृतिक कर्म है।